मुस्कान आपकी बाबा, जन्मों के गम हर लेती है मुस्कान आपकी बाबा, जन्मों के गम हर लेती है जैसे सूरज की आके किरण, जैसे सूरज की आके किरण अंधियार दूर कर देती है।
ओम शांति। जब दादियां कहती हैं तो आप जोर से बोलते हो, हाँ? तो आप ये समझो कि दादियां ही बैठी हैं यहां, हाँ? ओम शांति। आज बाबा के बहुत बहुत लाडले, लवली और लक्की बच्चों का ये संगठन आज के दिन, आज की शाम कल पहले की तरह, बल्कि अनेका अनेक अनगिनत बार के कल्प की तरह हुआ है। और इस विशाल बेहद के और डायमंड एज के डायमंड हॉल में हम कुछ घड़ियां भी बैठते हैं तो वो घड़ियां चाहे छोटी हैं, लेकिन कहा जाता है चाहे छोटी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। तो बाबा का स्नेह हम सब बच्चों के ऊपर वर्षा हो रही है, और खास तौर पर बहुत दिन संगम के सभी दिन बहुत ही कल्याणकारी हैं, लेकिन उनके अंदर भी हमारे दो दिन ऐसे हैं जो बहुत ही विशेष हैं। एक तो है हमारे परम पिता अनादि पिता की जयंती जो अगले महीने आएगी, और एक है हमारे अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस जो कि कल ही है। इसलिए हम आज यहां उस सारे कल्प के एक ही अद्वितीय आत्मा जिनका के अद्वितीय पार्ट है और जिनके साथ हम सबको पूरा कल्प रहना है, शिव बाबा के साथ हम केवल संगम पर रहते हैं लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ हम पूरा कल्प रहते हैं। तो ऐसे पिता, अलौकिक पिता जो कि जब उनका दिन होता है तो हमारा भी दिन हो जाता है, और जब उनकी रात होती है तो हमारी भी रात हो जाती है। ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार और कुमारियों, जिसको कहते हैं बाबा की हजारों भुजाएं हैं, लाखों भुजाएं हैं, उनसे कभी अलग नहीं है। और बच्चे भी कहीं भी रहते हों शारीरिक तौर पर बाबा से अलग नहीं है। तो कैसा ये मिलाप है कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा इकट्ठे रहते हैं और बच्चे और दोनों बाबा इकट्ठे रहते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा विचित्र कल्प वृक्ष की जड़ का पाठ है उसको देखकर बाबा के सभी बच्चे उसको स्मृति में लाकर एक नई अलौकिक दिव्य दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं और साथ साथ हमारे परिवर्तन से सारे विश्व का परिवर्तन जुड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं जब मेरे ब्राह्मण बच्चे आंख खोलते हैं तो सारी दुनिया की आंख खुल जाती है और जब ब्राह्मण बच्चे आंख बंद करते हैं तो सारी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा के बारे में कुछ स्मृतियां को याद करना बहुत ही अति इंद्रिय सुख और खुशी प्रदान करने वाला है। पहले पहले आप ये बताइए कि सारी विशाल सभा में ऐसे कौन से बहन भाई हैं जिन्होंने साकार ब्रह्मा से मिला है, एक बार भी मिला है वो हाथ उठाइए। एक बहन जी है, अच्छा यहां सामने सामने भी कोई नहीं है और इधर एक दो दो भाई जी है मुश्किल में हैं, पांच भी नहीं है, इनका नोट कर लिया हमने। हाँ जी, तो आप देखिए कि ये भी एक विचित्र पार्ट है, इसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो रोल है पार्ट है उसमें बहुत ही फायदे हैं और जो हमारा पार्ट था उसमें भी बहुत ही फायदे हैं। ये ड्रामा इस तरह से बना हुआ है कि इसमें हर एक को बराबर बराबर चांस है, उसको खाली समझना होता है। आज भी कोई बाबा का बच्चा नया, पहले ये बताइए कि आज पहली बार कितने बच्चे आए हैं बाबा के, फर्स्ट टाइम वाले देखो, फर्स्ट टाइम वाले। तो फर्स्ट टाइम वाले कभी ये समझते हो कि हम तो लेट आए, नहीं, आपको भी बहुत फायदे हैं। तो इसलिए हर एक अपने फायदे देखेगा और कहा जाता है सो चिंतन करेगा, सो दर्शन फिराएगा और सो मान में रहेगा तो किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। और जो ही आप ये देखेंगे कि ये तो बहुत लकी सोल्स हैं, इन्होंने बाबा से साकार पालना ली है, तो इसको भी सूक्ष्म रीति से एक प्रकार का परचिंतन गिना जाता है और आप जानते हैं परचिंतन से क्या होता है। इसलिए हर चीज में कल्याण है। अब मैं एक छोटी सी बात बता के फिर आगे चलता हूं। बाबा कहते हैं बच्चों के जो मार्क्स हैं, नंबर हैं, वो उनके ब्राह्मण जीवन के जन्म से लेकर और ब्राह्मण जीवन के अंत तक के आधार पर गिने जाते हैं कि आपकी जीवन रेखा कैसी है, स्ट्रांग है, सीधी है, कटी हुई है, टूटी हुई है। तो जितना लंबा ब्राह्मण जीवन होगा उसमें उस आधार पे आपके नंबर गिने जाएंगे और जितना छोटा ब्राह्मण जीवन अब है, एक तो आपको सारा ज्ञान प्रत्यक्ष है, पकी पकाई है और अनेका अनेक बच्चे हैं, निश्चय होना बहुत आसान है, और दूसरे आप जैसे कोई भोजन बनाया जाता है उसमें अगर चना बनाना हो तो चना बड़ा सख्त होता है, उसको पहले भिगोया जाता है सारी रात, उसमें सोडा डाला जाता है, फिर आग पर काफी देर चढ़ाया जाता है तब वो गलता है, और टमाटर और धनिया वो शुरू में नहीं डाला जाता, जब सब तैयार हो जाता है ऊपर रख देते हैं। बस इसी प्रकार से उसका अपना गुण है, उसका अपना गुण है। तो कोई ये समझे कि वर्षों के आधार पर अगर हमारे ज्ञान में मार्क्स हैं तो सारी माला आदि रत्नों की बन जाए, फिर हम किस लिए आए हैं? इसलिए अपनी अपनी विशेषता देखनी है। इस थोड़े से समय में बाबा कहता है कि एक सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु वो सेकंड कौन सा है वो हमारे हाथ में है निश्चित करना। 70 साल वालों का सेकंड भी आज आ सकता है आज, और आज आने वालों का वह सेकंड भी आज आ सकता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना। तो पहली बात, ब्रह्मा बाबा हैं कौन? शास्त्रों में ब्रह्मा बाबा का बहुत वर्णन है, ना केवल भारत के शास्त्रों में बल्कि सभी धर्मों के शास्त्रों में ब्रह्मा बाबा के बारे में भिन्न भिन्न तरीके से बताया हुआ है। क्यों? कि अगर सर्व आत्माओं के पिता शिव बाबा हैं तो सर्व मनुष्य आत्माओं के पिता ब्रह्मा बाबा हैं। चाहे वो ईसाई धर्म की आत्माएं हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म की आत्मा हो, चाहे वो नास्तिक आत्मा हो, अर्थात भगवान को नहीं मानने वाले, लेकिन सबका लिंक ब्रह्मा बाबा से है। जैसे एक वृक्ष होता है, बाबा ने कल्प वृक्ष का मिसाल देकर एक ही चित्र में हम बच्चों को मास्टर त्रिकालदर्शी बना दिया है। जैसे वृक्ष होता है, उसकी जड़ से हर पत्ते का कनेक्शन होता है, चाहे वह पत्ता एंड में जाकर निकले, और बीज से भी हर पत्ते का कनेक्शन होता है। इसी प्रकार से सारे विश्व के इस उल्टे वृक्ष कल्प वृक्ष से सब आत्माओं का कनेक्शन है। तो ब्रह्मा बाबा को ईसाई धर्म वाले एडम कह के याद करते हैं, मुस्लिम धर्म वाले आदम कह के याद करते हैं, बुद्ध धर्म वाले आदिनाथ आदि देव कह के याद करते हैं, और भारतवासी ब्रह्मा कह के याद करते हैं। और सबका यही कहना है कि मानवता का आद, मानव सृष्टि का आद निराकार शिव तो उनको दिखते नहीं। निराकार शिव को तो सर्वव्यापी भी कह देते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा को वो सर्वव्यापी नहीं कह सकते। कल की मुरली में ही था कि बाप कभी सर्वव्यापी नहीं होता, फादर। तो इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा का सब धर्मों में नाम है। अब भारत विशेष है, क्योंकि भारतवासी माता पिता कह के भगवान को याद करते हैं। तो मेरे माता च पिता, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। और बाकी धर्मों वाले फादर कह के याद करते हैं, और भारत मदर एंड फादर कह के याद करते हैं। इसलिए भारत माता, भारत को मदरलैंड भी कहते हैं। अब ये ब्रह्मा बाबा मां कैसे है? तो बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि हम डायरेक्ट बच्चे हैं जो माता पिता के द्वारा जन्म लेते हैं, और वो इनडायरेक्ट बच्चे हैं क्योंकि वो केवल पिता से संबंधित हैं। दोनों प्रकार के बच्चे अडॉप्टेड। आप सोचिए कि लाखों बच्चे और किसी ढंग से बच्चे नहीं बन सकते सिवाय अडॉप्टेड चिल्ड्रन के। अडॉप्ट कैसे होते हैं? हमेशा बाबा कहता है कि गरीब बच्चे को अमीर बाप अडॉप्ट करता है। कभी भी अमीर का बच्चा गरीब बाप के पास अडॉप्ट नहीं होता। तो बाबा गरीब नवाज है। तो अडॉप्टेड मीन्स मुख से कहा हमने मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरा बच्चा अडॉप्ट हो गया। इसलिए हमारा बाबा से संबंध ब्लड रिलेशन का नहीं है, स्पिरिचुअल रिलेशन का है। तो हम बाबा के रूहानी अडॉप्टेड बच्चे हैं। अच्छा, और पक्का करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले जब बाबा साकार में होते थे, आजकल वो प्रश्न नहीं रहा, यही प्रश्न होता था, ये व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मा कहता है, ब्रह्मा तो शास्त्रों में लिखा हुआ ऐसा है, ब्रह्मा तो कहते आसमान में दिखाते हैं, क्योंकि कई भक्ति मार्ग के चित्रों में आपने देखा होगा ब्रह्मा विष्णु शंकर को आकाश में दिखाते हैं और वो फूल बरसा रहे हैं, नीचे कोई यज्ञ कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो सूक्ष्म वतन का दिखाते हैं। फिर उनको ये बड़ा ख्याल रहता है कि शास्त्रों में तो दाढ़ी वाला ब्रह्मा है, उसके तीन मुख हैं, एक पीछे भी होगा, चार मुख हैं, और ये ब्रह्मा तो है दाढ़ी मुख है ही नहीं, वो दाढ़ी लंबी लंबी, ये भी उनको शक पड़ता था। फिर वो सोचते थे ब्रह्मा आजकल कहां से आ गया, किस जमाने में ब्रह्मा कैसे, तो इसलिए उनको ब्रह्मा पर डाउट होता था, और ब्रह्मा पर हुआ तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों पर आप ही हो गया। हमको कहते थे वाह आप ही हैं ब्रह्मा बाबा के बच्चे, हा? इसलिए शास्त्रों में इसका भी वर्णन है। आप देखिए कि ब्रह्मा जी को आदि देव कहा गया है, देव नहीं आदि देव। अब आदि शब्द क्यों लगाया गया, क्योंकि ये देवताओं के युग, दैवी युग, देवालय की आद में होते हैं, इसलिए इनको आदि देव कहा जाता है। कल की मुरली में भी था, आज की मुरली में भी था कि बाबा पतित दुनिया में आकर पतित को पावन करते हैं, पुरानी दुनिया में आकर प्राणी को नया बनाते हैं, ठीक है, रात्रि के समय आकर उसको दिन बनाते हैं, तो जरूर आदि काल में हुए। और बहुत सारी डिटेल बाबा बताते हैं कि कोई व्यक्ति पुराने मकान में रहकर नया बनाता है या पुराने को पहले तोड़ देता है फिर नया बनाता है, तो पुराने में रहकर ट्रांसफर करता है। तो आदि देव हमारे पिता हैं, और हम भी क्या हो गए, आदि बच्चे हो गए सृष्टि की आद में। आज की गीता में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि सृष्टि की आद में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे ब्राह्मण और देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए, आज की गीता में भी लिखा हुआ है। दूसरा नाम प्रजापिता, जिसको वो प्रजापति कह देते हैं। वास्तव में पति कहो या पिता कहो, राष्ट्रपति मैंने राष्ट्र का पिता, तो प्रजापिता यानी वो एक दो अपने लौकिक बच्चों का पिता नहीं है, परंतु सारी प्रजा का पिता है, अर्थात उनकी बहुत सारी प्रजा है। तो बाबा हमेशा कहते थे कि अगर बाबा साकार में नहीं आए तो प्रजा कैसे रचेगा, आकाश में प्रजा रचेगा क्या, तो पहले साकार में प्रजा रचते हैं और खुद भी संपूर्ण बनते जाते हैं और बच्चों को भी बनाते जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो आदि पिता है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे नंबर वन पद पाने वाला है, इसलिए बाबा जल्दी संपूर्ण बन जाते हैं। और हमेशा दुनिया में भी माँ बाप पहले तैयार हो जाते हैं, बच्चे बाद में तैयार होते हैं, दुनिया का लॉ है। तो कहते हैं जब मैं संपूर्ण बन जाता हूँ तो उस वो ड्रामा अनुसार बनता हूँ, लेकिन केवल यही एक आत्मा है जो संपूर्ण बनने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेती और अपने बच्चों का वेट करती है सूक्ष्म लोक में, बच्चों को सूक्ष्म बनने में मदद करती है। और यहां पर आप आत्माओं का जो बाद में आए हैं बहुत विशेष आपको लाभ है। जिन बच्चों ने साकार को देखा हुआ है या साकार से पालना ली हुई है, हम जब भी बाबा को याद करने बैठेंगे हमें साकार जरूर पहले आएगा, फिर हम आकारी में जाएंगे, और जिन्होंने जन्म ही आकार में लिया है उनको साकार में टिकना की जरूरत नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जो बाद की आत्माएं हैं वो आसानी से फरिश्ता बन सकती हैं, अलौकिक स्थिति में रह सकती हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है वो जल्दी जल्दी बढ़ती है। बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही हमारे सारे विदेशों के सेंटर खुले हैं, भारत के कितने सेंटर बने हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा के दो पार्ट हो गए, एक तो साकार लोक का और एक अव्यक्त ब्रह्मा का। इसीलिए उनको आकाश में भी दिखाते हैं। अच्छा, एक और विशेषता है, जितने देवता हैं, देवियां तो हैं ही, जितने देवता हैं किसी के भी दाढ़ी मूछ नहीं है। आप देख लो, हमारे तो सतयुग में आने की एक लालच ये भी है कि हमें वहां शेव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितने कुदरती तौर पे दाढ़ी मूछ नहीं है, चाहे वो श्री कृष्ण है, चाहे वो श्री नारायण है, श्री राम है, जितने भी हैं, और वहां पर तो फीचर्स पुरुष और स्त्री के एक जैसे होते हैं, तो फिर ये ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ शास्त्र वालों ने क्यों दिखाई और उनका चित्र ऐसा क्यों बनाया? उन्होंने इस बात से अंकित किया, संकेत किया कि ब्रह्मा बाबा देवलोक के नहीं है, देवताओं की आद में होने वाले आदि देव हैं, जहां दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य होते थे। लेकिन शास्त्र वालों ने ऋषियों के भी दाढ़ियां दिखा दी हैं, हालांकि सफेद नहीं दिखाते कईयों की। इस कारण से लोग कंफ्यूज हो गए हैं, ऐसे ऋषि भी थे ब्रह्मा भी थे। परंतु ये भी इस बात को पक्का करता है कि ब्रह्मा बाबा आदिकाल के हैं। फिर और भी है, ब्रह्मा का नाम देखो, ब्रह्मा को नंदीगण कहते हैं। अब नंदीगण मैंने होता जो सदा खुश रहे, गीत भी बज रहा था कि बाबा सदा खुश रखते हैं, खुश रहते हैं। तो नंदीगण जो सदा आनंद में रहते हैं, आनंदित रहते हैं, उसको बैल बना दिया है और उसके ऊपर शिव की सवारी बना दी है। अब बैल क्यों बनाया है? क्योंकि एक तरफ कहते हैं भगवान ने गौशाला खोली थी, हैं गाय को घास खिलाया था ज्ञान का, और श्री कृष्ण के साथ गाय भी दिखाते हैं। और क्योंकि ये सारी गाय, कभी कभी हम सोचते हैं कि श्री कृष्ण की जो गौशाला थी जिसको वो मानते हैं, उसमें कोई बछड़ा या बैल नहीं था क्या? सारी गाय ही थी। परंतु अगर ज्ञान के हिसाब से देखें तो क्योंकि बाबा का शरीर मेल का है, एक मेल माता बन सकता है और एक फीमेल पिता बन सकता है। ये चीजें हमें आत्मा की कॉन्शियसनेस को पक्का करती हैं। अब गुलजार दादी के अंदर बाबा आते हैं, हम बाबा हमेशा कहता आत्मा मेल फॉर्म में गिनी जाती है, बाप दादा आते हैं तो फीमेल में आते हैं, शरीर फीमेल का है। परंतु हमें कभी ऐसा ख्याल आया कि ये बाबा नहीं है, कोई फीमेल है? उस समय हम बॉडी कॉन्शियस से अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा मां था, बड़ी मां थी, तो इसलिए शरीर उसका मेल का था, क्योंकि ये सारा आध्यात्मिक खेल है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को नंदीगण अर्थात शिव का रथ दिखाते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि क्या जिसको वो शंकर मानते हैं कभी भी नंदीगण के ऊपर निराकार की सवारी तो दिखाते नहीं, लेकिन शंकर मानते हैं क्या सूक्ष्म लोक में बैल होता है? तो बाबा कहते हैं कि मेल पर्सन की निशानी है कि परमात्मा का अवतरण मेल पर्सन में होता है। फिर ब्रह्मा को भागीरथ कहते हैं, ये भी शास्त्रों में है, ये कहानी बनाई हुई है कि शिव से गंगा निकली थी, जिसे भागीरथ कोई राजा था वो शंख बजाता हुआ भारत में लाया था। तो बाबा ने बताया है कि भागीरथ माने भाग्यशाली श्री रूपी रथ, जिसके अंदर शिव बाबा आके ज्ञान की गंगा बहाते हैं। और शंख बजाने का क्या अर्थ? कि शंख ध्वनि है ना करते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि शंख ध्वनि की, कई लोग मंदिरों में भी देवताओं के आगे शंख बजाते हैं उनको जगाने के लिए कि देवता लोग सोए हुए हैं, बहुत समय से रात्रि में है, अब जागो चेतन में आओ। तो ये सारे नाम सिद्ध करते हैं कि ब्रह्मा बाबा ही वह रथ है जिसके द्वारा भगवान ने अपना पाठ बजाया। लास्ट बात कि ये भी एक वंडर की बात है कि परमात्मा दुनिया में आ जाए, परमात्मा खुद आ जाए, जिसको बहुत जन्मों से लोग याद करते हैं वो आ जाए और उसको बहुत थोड़े लोग उसका साथ दें। गिनती के 5 पांडव यानी गिनती के बच्चे उसको पहचाने और बाकी सारे के सारी आत्माएं जिनका वो पिता है वो सारे की सारी दूसरी सेना में शामिल हो जाए, वो कौरव सेना में शामिल हो जाए और उसमें बड़े बड़े आचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी दुर्योधन जैसा राजा सारे ही साधु सन्यासी राजा उसको पहचाने ही नहीं। तो ये जो गिनती के पहचानने वाले हैं ये हम और आप बच्चे ही हैं, क्योंकि हमने हर कल्प बाबा को जाना है, बाबा से प्यार भी पाया है, बाबा से पालना भी पाई है, बाबा से श्रीमत भी ली है। तो वहां लिखा हुआ है कि क्यों नहीं पहचानते कि मुझ साधारण तन में आए हुए परमात्मा को ये मूढ़मति मनुष्य तुच्छ समझते हैं, अर्थात इनकी बुद्धि में नहीं आता कि परमात्मा साधारण तन में आ सकता है। क्यों? ये बाबा कहता है मेरे आने का टाइम ही कौन सा है, मेरे आने का टाइम है कलयुग का अंत, क्योंकि मैंने सतयुग बनाना है और कलयुग के अंदर देवता तो आ ही नहीं सकते, देवताओं की तो यहां परछाई नहीं पड़ सकती। अगर दिल्ली में कोई देवता आ जाए और दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बस का धुआं उसकी नाक में चला जाए वो तो वहीं मूर्छित हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कि यहां तो जैसे हैं उसी में आऊंगा, तो इसलिए साधारण तन में आता हूं और जन्म नहीं लेता हूं, मैं अवतरित होता हूं, रथ में सवार होता हूं। फिर वो और कंफ्यूज होते हैं, उनको पहचान में ही नहीं आता कि ये तो कल तक दादा लेख राय थे, आज ये ब्रह्मा कैसे बन गए। इस वजह से बाबा कहता है कि मेरे बच्चे जिनको के खुद शिव तीसरी आंख खोलते हैं, हमारी जन्म गुट्टी क्या है, हर ब्राह्मण को जन्मते ही एक विशेष गिफ्ट मिलता है, वो है तीसरी आंख। लोग कहते हैं शिव ने तीसरी आंख खोली तो विनाश हो गया, लेकिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली या दूसरों की खोली? क्या शिव की तीसरी आंख बंद थी? नहीं, तो शिव ने बच्चों की तीसरी आंख खोली, जिससे क्या हुआ, वो इतनी पावरफुल आंख है जिससे माया का विनाश हो जाता है। उनको उस आंख से पता लग जाता है ये माया है, ये दुख देने वाली है, ये रावण है, वो भस्म हो जाता है। तो शिव इसीलिए शंकर जिसको गिनते हैं उसको भस्म लगाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज को ऊपर ऊपर से काटोगे, घास को काटोगे दोबारा उग जाएगा, भाई लोग शेव करते हैं दोबारा उग जाता है, लेकिन अगर भस्म होगा भस्मीभूत तो भस्म में कुछ उगता नहीं है। इसलिए कहते हैं सदा स्वाहा कर दो, भस्म कर दो, सदा के लिए छुट्टी पाओ। तो इसलिए ये सारी बातें हमारे बाबा के ऊपर लागू होती हैं। अब हम आपको थोड़ी सी अपनी पर्सनल बाबा के साथ जो हमारे 2-4 दृश्य जो हैं वो आपको सुनाते हैं। ये बात 1955 की है, 1955 के अंदर मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था दिल्ली में और चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी साथ साथ सीखता था। तो मेरे लौकिक पिता और माता ज्ञान में आए। मेरे लौकिक पिता को योग का बहुत शौक था, वो योग आसनों को समझते थे कि मेरा हेल्थ ठीक रहेगा। तो किसी ने कह दिया, ताजी ताजी ब्रह्मा कुमारियां दिल्ली में जमुना के कंठे पर आई थी, बाबा ने भेजा था जाओ अब पब्लिक सर्विस करो, जो तुम्हें मिला है आत्माओं को दो। तो पहले पहले दिल्ली में आई थी तो उनके एक फ्रेंड ने बताया कि वो एक देवियां आई हैं, वो योग सिखाती हैं। तो इसी चाव में वो योग सीखने चले गए, परंतु हमारा योग तो दूसरी तरह का है, आध्यात्मिक है, सूक्ष्म है, राजयोग है। परंतु हमारे लौकिक पिता का कोई पाठ होगा तो उन्होंने उसको जल्दी से सीख लिया। वो आरएसएस जो होता है संघ, उसके मेंबर थे, कई चीजें उसमें डिसिप्लिन की होती हैं, तो उन्होंने जल्दी से ड्रामा अनुसार सीख लिया। तो हमारी माताजी, पिताजी, मेरा छोटा भाई और हम जल्दी से ज्ञान में आ गए। अब उस समय ज्यादातर ज्ञान में सिंधी होते थे, लोग कहते थे सिंधियों की संस्था है। तो उसमें बाबा ने दिल्ली में दो चार और शहरों में बच्चों को भेजा था, तो जो परिवार कट्ठे का कट्ठा ज्ञान में आ जाए, और हमारे पिताजी की बैकग्राउंड आर्य समाज की थी, हमारी माताजी की राधा स्वामी की थी, गुरु की थी, तो जो आ जाए, मैं दोनों जगह जाया करता था। अच्छा, दोनों जगह टोली मिलती है, आपको पता है। तो इसलिए वो परिवार उस समय गिना जाता था कि नया परिवार, पंजाबी परिवार ज्ञान में आया है। तो उस स्थिति में हम मधुबन आए, परमिशन मिला बाबा मम्मा को फर्स्ट टाइम मिलने का। वो दृश्य क्या था कि सारा रास्ता दिल्ली से यहां तक हम ये सोचते रहे ब्रह्मा बाबा कैसा होगा, बाबा में भगवान आता है, भगवान का रथ है। तो बड़ी अंदर में उत्सुकता थी कि देखें तो सही वो बाबा कौन है, कैसा लगता है। तो हम इसी सोच में, इसी जैसे होता है कि एक प्रकार की अजीबोगरीब घटना की इंतजार में हम माउंट आबू आ गए। तो उस समय ये जो पांडव भवन है ये नहीं था, एक दूसरा पांडव भवन था जो गवर्नमेंट ने बाद में ले लिया था राजस्थान ने, तो हमने अपना लिया, उसको सर्किट हाउस कहते हैं आजकल। उसमें उसके साथ ही एक और भवन था या जो थोड़े से बच्चे आते थे, ठहरते थे। आखिर वो घड़ी आई कि हमें बाबा से मिलने का बिठा दिया गया, हॉल छोटा सा था उसमें बैठ गए। तो वहां जितनी बहनें थी वो बाल बखेर कर, सफेद कपड़े पहनकर खुली खुली घूमती थी, उसमें बाबा के बच्चे ही रहते थे। तो फर्स्ट टाइम हमें बड़ा विचित्र लगा, ये कौन सा लोक है, सफेद कपड़े वाली बहने ऐसे खुले बाल बखेर कर जैसे कोई ऋषि होते हैं घूम रही हैं। खैर, एक पार्टीशन होता था लकड़ी का जिसके साइड से बाबा आते थे, मम्मा आते थे। तो थोड़ी देर के बाद जब हम बैठे थे तो लकड़ी की खड़ाओं, बाबा पहनते थे, तो लकड़ी की खड़ाओं की आवाज आई। तो हमने साइड में देखा कि पार्टीशन में बाबा के पैर दिखाई दिए, फिर मम्मा के दिखाई दिए। हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई कि अब देखेंगे बाबा कैसे हैं। तो बाबा बहुत ही धीरे धीरे रॉयल ढंग से आकर बाबा अपनी आसन पर बैठ गए और मम्मा अपनी आसन पर बैठ गई। तो हमने देखा कि बाबा का कितना लंबे तो बाबा थे ही और आयु भी बहुत थी, लेकिन कितना चमकदार चेहरा था, कितनी चमकदार आंखें थी, जैसे उनका शरीर कोई तांबे जैसा होता है, बहुत अट्रैक्टिव था। तो बाबा बैठ गए, मम्मा की तरफ देखा, मम्मा का तो सारा शारीरिक परिवर्तन ही हो गया था, कहां एक कुमारी, कहां उसका मां का रूप। और मम्मा की आंखें आज आप चित्र में भी देखेंगे तो बहुत प्रभावशाली हैं, और मम्मा की आंख हमेशा दिखती सामने को है, गौर से देखो तो लगेगा ऊपर लगन लगी हुई है। अब हमारे लिए ये हो गया, बाबा को पहले देखें, मम्मा को देखें। तो हम बारी बारी देख रहे थे, क्योंकि क्या करें, दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव थे। तो जैसे मैं ऐसे ऐसे कर रहा था तो मम्मा वहां से मुस्कुराई स्टेज से कि ये क्या कर रहा है, मुझे ये पता नहीं था मेरे माता पिता और भाई क्या कर रहे हैं। खैर, फिर मिलने का टाइम आया। जब मिलने का टाइम आया तो हम बाबा की गोद में गए। तो बाबा की गोद में जाते ही ऐसे लगा कि हमारा वजन नहीं है, शरीर नहीं है, सिर्फ एक आत्मा गुमसुम, जैसे कोई बहुत ही सुख में कोई रुई का बना हुआ हो, वो बाबा की गोद में लेटा हुआ, जिसको कहते हैं बॉडीलेस, बिल्कुल ऐसा हो गया। फिर हम मम्मा की गोद में गए तो बहुत ही ऐसे जी करे उठे ही ना, ऐसा लगे, पर सबको मिलना होता है। तो जब हमारी टाइम पूरा हो गया तो पीठ में تھپکی دیتے تھے مما بابا کہ اب اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو ہماری پیٹھ میں تھپکی دیا تو میں اٹھا, لیکن پھر میں زور سے دوبارہ مما کی گود میں چلا گیا کیونکہ بہت سکھ محسوس ہو رہا تھا. یہ تھی ہماری پرتھم ملاقات. اس کے بعد ان دنوں میں ایسا ہوتا تھا کہ کلاس ہوتا تھا جس میں بابا آفیشیل طور پہ مرلی چلاتے تھے. کلاس کے بعد ایک سائڈ کا کمرہ تھا جس کو چیمبر بولتے تھے, جس میں پھر بچے بابا کے آس پاس بیٹھ جاتے تھے. تو برہما بابا مرلی تو شیو بابا اور مکس چلاتے تھے دونوں بابا, پھر وہ مرلی کے اوپر برہما بابا کچھ شکشا دیتے تھے, آج بابا نے ایسے کہا آج ایسے کہا, ہم پوچھتے بھی تھے. تو اس کو چیمبر کہتے تھے. تو چیمبر کے بعد پھر جو نئے پریوار آئے یا کوئی آئے ہیں بابا ان سے ملتے تھے. تو جب ہمارے پریوار سے ملے تو میرے پتا جی بہت گیان میں بہت امنگ میں تھے. ان کو اتنا امنگ اتساہ رہتا تھا کہ دلی شہر میں کہیں چلے جائیں, بس میں جائیں گے تو بس میں پرچہ بانٹیں گے, دکان پہ جائیں گے, تو کسی کو وہ چھوڑتے نہیں تھے. شاید ان کا ہی ورثہ مجھے ملا ہوا ہے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ اوروں کے تو الوکک اور پرلوکک کا ہے, مجھے لوکک الوکک پرلوکک, جیسے نرمل شانتا دادی کو ہے, تینوں ورثے ملے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بابا کو کہا کہ بابا اب میں نے سمجھ لیا, میں یہ دنیا چھوڑنا چاہتا ہوں, اب میں صرف آپ کی سیوا کرنا چاہتا ہوں. اچھا, میرے سے بابا نے پوچھا. میں نے کہا جی میرا لا کا سیکنڈ ایئر ہے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا تھرڈ ایئر ہے, ایک سال میں یہ پورا ہو جائے گا. میرے چھوٹے بھائی سے پوچھا تو اس نے کہا جی میں گیارہویں کلاس میں پڑھتا ہوں. تو میری ماتا سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم دلی میں ہمارے گھر میں دوسرا سینٹر دلی کا بنا ہے, تو میں وہاں رہتی ہوں بہنوں کے ساتھ. تو پتا جی کو بابا نے رائے دی کہ آپ, کیونکہ پریوار ہے ذمہ واری ہے, آپ پروتی مارگ میں رہو, آپ کو اپنا کام نہیں چھوڑنا ہے. مجھے رائے دی کہ تم کو ایک سال ہے اس کو پورا کر لو پڑھائی کو, اور میرے چھوٹے بھائی کو رائے دی کہ تم پڑھائی چھوڑ دو اور سرنڈر ہو جاؤ. اب آپ کو عجیب لگے گا کہ ایک آتما زور سے کہہ رہی ہے میں نے سرنڈر ہونا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں نہیں, اور دوسری کو کہہ رہی ہے کہ تم جو ہے پڑھائی کر لو پوری, اور تیسری کو کہہ رہی ہے کہ تم چھوڑ دو, وہ گیارہویں کلاس میں پڑھتا ہے. بابا کا کہنا ہے ٹھیک ہے, ضرور کلیان ہے. تو بعد میں ہم نے کیا دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی اس کے بعد کیول دو ورش جیا, اس کی آیو کم تھی, اور اس دو ورش میں اس نے کئی کام بہت آوشک کام کیے یگیہ کے, اگر وہ پڑھتا رہتا تو نہیں کرتا. پہلی بات کہ بابا نے دلی میں کہا تھا, ایک بار بابا فرسٹ ٹائم آئے تو ہمارا سینٹر جو مین تھا وہ تھرڈ فلور پر تھا, کرایہ دار بھی رہتے تھے, اور اس کی بھی چھت پر بابا کا کلاس ہوا, اور لفٹ وفٹ تو ہوتا نہیں تھا, اور نیچے کرایہ دار رہتے تھے. تو بابا نے کہا بچے آپ لوگ دیکھو کس کو لائے ہو, اور گرب جیل میں بٹھا دیا ہے, اگلی باری بابا کو بلانا ہے تو انڈیپینڈنٹ مکان میں بلانا. تو اسی پرکار سے ہمارا چھوٹا بھائی دلی میں سائیکل پر جا کر, ایک نیا ایریا تھا رجوری گارڈن جہاں نئے نئے مکان بنے تھے, لمبی سٹوری نہیں بتاتا, مطلب اس نے وہ مکان ڈھونڈا. اس سمے پردرشنیاں ہوتی تھی اور طرح کی. بابا کے بچہ نارائن جویلری کا بزنس کرتے تھے, ان سے تھوڑی جویلری منگا کر آرٹیفیشل جویلری, تو سٹال لے لیتے تھے اور اس میں ہم جھاڑ گولا رکھ کے سیوا کیا کرتے تھے. اس بھائی نے کیونکہ اسکول چھوڑ دیا تھا وہ بھی کیا, آخر دو ورش بعد اس کا شریر چھوٹ گیا. اور میرے لیے بابا کو پتا ہوگا اس نے کچھ سمے اور شریر میں رہنا ہے, اس لیے مجھے کہا کہ تم یہ پڑھائی پڑھ لو. اچھا یہ ہوئی یہ بات. اچھا اس کے پشچات جیسے ایک لوکک باپ ہوتا ہے, اس کو بہت اپنے بچوں کا سارا دن بچوں کا ہی خیال رہتا ہے. ویسے تو برہما بابا کہتے تھے میں تو آپ کو گیان دینے آیا ہوں, پتیت سے پاون بنانے آیا ہوں, मेरा कोई आपके लौकिक धंधे आदि से कोई संबंध नहीं है। जैसे लोग गुरुओं से पूछते हैं मैं बिजनेस कर लूं, मैं विदेश जाया हूं, नहीं है। लेकिन बाबा के अंदर, एक तो बाबा बच्चे को देखते ही इतने श्रूढ़ बुद्धि थे, जो हीरे परखने वाले होते हैं उसकी जन्म पत्री जान लेते थे, और दूसरे बाबा उसको राय भी देते थे। और ये बाबा का वायदा है कि अगर जिंदगी में, ब्राह्मण जीवन में केवल एक बार कोई बाबा का बच्चा बाबा की श्रीमत मान लेता है, एक बार, तो बाबा सारी लाइफ उसकी मदद करने को बंधा हुआ है। ये मैंने अनुभव किया। तो जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास कर लिया, तो मैंने, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग आमतौर पे अपना दफ्तर खोलते हैं, तो मैंने दिल्ली के बहुत अच्छे एरिया में ऑफिस खोला, उम्र मेरी 20 साल। तो छोटे वकील को लोग कम केस देते हैं, फिर भी मेरे पिताजी की वाकफियत थी तो कुछ केस मिले, तो मैं उन दिनों मधुबन आ गया। तो फर्स्ट बात बाबा ने मेरे से पूछी, तुम आपने इम्तिहान पास कर लिया? मैंने कहा कर लिया। क्या करते हो? तो मैंने बड़ी फखर से, जैसे यंग लोगों का यंग ब्लड होता है, अपनी अकल से सोचते मैंने बड़ा अच्छा किया। मैंने कहा बाबा मैंने दिल्ली में सदर बाजार में ऑफिस खोला है, बहुत अच्छा बिजनेस एरिया है। बाबा मुस्कुराए और मुझे कहा नजदीक आओ। तो मैं नजदीक तो था ही, और नजदीक चला गया। बोले देखो बाबा कभी शहर में जाता है? तुमको क्या चाहिए? 2 रोटी? तुम काहे को ये प्रैक्टिस करके झूठ सच बोलने का काम शुरू किया है? क्योंकि अकाउंट्स वालों को झूठ अकाउंट बदलने पड़ते हैं। आप जाके कोई सरकारी नौकरी कर लो बस। अच्छा, बाबा ने कहा, हमने माना, क्योंकि नेचुरली ड्रामा ऐसा था। तो बाद में दिल्ली जाके हमने कभी दोबारा अपने ऑफिस में नहीं गए। अपने भाई को कहा सब किताबें वताबें समेट दो। और पहली नौकरी, जीवन में पहली बार अखबार पढ़ा, नौकरियां कहां लिखी होती हैं, और उसमें जो पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी का विज्ञापन दिखा, उसमें हाथ से लिख के अर्जी भेज दी। और वहां हमें, क्योंकि पीछे बाबा की शक्ति थी, बिल्कुल विचित्र हालात में वो जॉब मिल गया। उसकी डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन टाइम थोड़ा है, इसलिए समझो बाबा ने हमें सर्विस दिलवाई। ऐसे करके तो आप देखेंगे कि भारत में रसम है कि जो व्यक्ति गुरु अपन उसको कोई धंधा करता है या जॉब करता है, तो अपनी पहली तनख्वाह वो अपने गुरु को भेज देता है। तो मैंने भी उसी अनुसार जो मुझे पहली तनख्वाह मिली नौकरी से, वो मैंने ड्राफ्ट बना के रजिस्ट्री करा के बाबा को भेज दी। अच्छा, तो बाबा ने क्या किया, वो रजिस्ट्री करा के वापस कर दी। अब देखो, दुनिया में कोई ऐसा गुरु तो नहीं होता जो आपके वापस कर दे। गुरु तो कहते हैं और दे दो कुछ, वापस कर दी और चिट्ठी लिखी। जैसे निर्वैर जी सुबह आपको बता रहे थे कि छोटा सा कागज, मोटी मोटी 3B की पेंसिल, 8 अक्षर उसमें होते थे हमारे लिए, क्योंकि बाबा सार में लिखते थे, हमारे लिए वो गोल्डन होता था। चिट्ठी लिख दी कि बच्चे तुमको किसने कहा है तुम पैसा भेजो? बाबा के बच्चे और बाबा में कोई फर्क थोड़ी है, अपने पास ही रखो, सेवा में लगाओ। उन दिनों मुरलियां आया करती थी कि बाबा की मर्जी है, जिसका सफल कराए जिसका ना कराए, बाबा तो जौहरी है, बाबा बहुत श्रूड बिजनेसमैन है, जिसका लेगा उसका पदम गुना करके देना पड़ेगा, आदि आदि। तो मैंने फिर वापस किया, एक चिट्ठी लिखी। मैंने कहा आपने कहा था कि आप ये जो नौकरी करो, मैंने करी, और ये तो ईमानदारी का पैसा है, इसमें कोई झूठ सच का अकाउंट की बात नहीं है। और मैंने इसीलिए भेजा कि आप नहीं चाहते कि आप मेरा सफल करें, क्योंकि मुरली का ही पॉइंट अपने बाप को लिख दिया। अच्छा, इसलिए आप इसको स्वीकार करें। तो बाबा ने रख लिया, फिर लेटर लिखा कि अच्छा इस बार बाबा ने रख लिया है, आगे से नहीं भेजना। अब आप सोचो, एक 20 साल के यंग बॉय को अगर इस तरह का अनुभव होगा, तो वो बेचारे के अंदर क्या असर पड़ेगा कि ऐसा भी कोई हो सकता है, हैं? ऐसी भी संस्था हो सकती है जिसको पैसे का वैल्यू नहीं है, इस तरह से लेने की इच्छा नहीं है। अच्छा, फिर बाबा की श्रीमत से मैं वहां पर अपनी जगह, मेरी जहां जॉब थी, सेंटर चलाता था। बाबा को भी बहुत प्रेम था। पहले पहले टेप निकला, मोटा टेप होता था बड़ा, स्कूल वाला, तो बाबा ने मुझे कहा आप टेप ले लो, और उसका लकड़ी की प्लाईवुड की बॉक्स में उसका स्कूल आता था मुरलियों का। तो आसपास पंजाब के शहरों में, लुधियाना या कहीं, वो जाके टेप बजाना है ताकि बच्चों को डायरेक्ट बाबा के महावाक्य सुन सकें। अच्छा, फिर कुछ पैसा जो मेरा बचता था तो मैं ये जो कंपनियां होती हैं उसमें इन्वेस्ट कर देता था। बाबा को बता देता था कि बाबा ये पैसा मैंने वहां रखा हुआ क्योंकि एक्स्ट्रा है, आपने लेना नहीं। तो एक कंपनी उन दोनों निकली थी, बहुत बड़ी, जिसका नाम था जयंती शिपिंग कंपनी, बहुत बड़ी थी। किसी बिजनेसमैन ने नेहरू जी को प्रपोजल दिया था कि भारत में अनाज आता है अमेरिका से और अनाज के जहाज में बहुत खर्चा आता है शिपिंग का, तो क्यों नहीं हम जापान से इंस्टॉलमेंट पर जहाज खरीद लें, वो बच जाएगा। आइडिया बहुत अच्छा था। उसमें मैंने कुछ पैसे रख दिए थे। अच्छा, जो मेरा ब्रोकर था उसने 2-3 साल बाद मुझे बता दिया ये कंपनी फेल होने वाली है, तो मैंने पैसे निकाल लिए थे। तो कहने का भाव ये, जब मैं कंपनी के फेल होने का आया तो जब मैं नेक्स्ट टाइम मधुबन आया, पहला सवाल बाबा ने पूछा जैसे एक बाप पूछता है, बच्चे तुम्हारे पैसे उस जयंती कंपनी में थे ना, उसका क्या हुआ? मैंने कहा बाबा वो मैंने निकाल लिए थे क्योंकि मुझे पहले पता लग गया था। इतना बाबा को दर्द था बच्चों का, आप सोच सकते हैं। अभी मेरा टाइम तो होता जा रहा है, एक घटना और सुना देता हूं। बाबा का बच्चों से इतना प्यार था कि आपको फील होता था कि अलौकिक बच्चा और लौकिक बच्चा में बाबा अलौकिक बच्चों का कितना स्नेह देता है। तो बीच बीच में हम जब मधुबन आते थे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारी आइटम होती थी, वो ये थी कि दोपहर के भोजन के बाद ये जो बाबा का कमरा आप ऊपर देखते हैं, जिसको बाबा ने एक धाम बताया है, उसी में बाबा आधा कमरा होता था, अभी डबल हो गया है, आधे में फ्रूट रखा जाता था जो बाबा खुद छांट कर पका हुआ फ्रूट देते थे बांटने के लिए। अभी उसको मेडिटेशन के लिए खोल दिया है। छोटे से कमरे में अभी भी बाबा की गद्दी लगी हुई है, बाबा का खाट लगा हुआ है, उसी गद्दी पर बाबा बैठ के हमसे मिलते थे। तो भोजन के बाद बाबा 5-4 बच्चों को बुला लेते थे और हमारे साथ खेल खेलते थे। अच्छा, उसमें कभी कभी बाबा का लौकिक बच्चा नारायण भाई भी आ जाता था, उसका बाबा से स्नेह तो है ही, अभी भी आता है। तो बाबा हमेशा नारायण को सामने बिठाते थे और हमें अपने साथ गद्दी पर बिठाते थे, तो हमें बड़ी खुशी होती थी, देखो कि बाबा अलौकिक बच्चों को इतना स्नेह देते हैं। तो घटना यह है कि हम हमेशा ही रोज उस समय का इंतजार करते थे बड़े प्यार से, और जब हम हार जाते थे तो बाबा हमसे ऐसे ऐसे नाक करवाते थे, उसमें भी हमें मजा आता था। एक दिन बाबा ने नहीं बुलाया तो हम इर्द गिर्द घूम रहे थे, तो लच्छू दादी जो बाबा की ब्राह्मणी बाहर आई, हमने कहा लच्छू दादी बाबा ने बुलाया नहीं। कहती अच्छा मैं पूछ के आती हूँ। वो गई पूछने, बोली बाबा कहते हैं जाओ अपने साथियों को लेकर आ जाओ। हम चले गए तो बाबा कंबल सा ओढ़ के, जैसे चिट्ठी लिखने का चित्र है बाबा का, ऐसे बैठे हुए थे। हमने खेलना शुरू किया तो पहली खेल में ही बाबा हार गया। बाबा तो कभी हारता नहीं था। हम बड़े हैरान, हम सोचते थे कि दो और हारेगा ऐसे करवाएंगे। अच्छा, लेकिन हुआ ये कि बाबा ने, हमने कहा बाबा हार कैसे गया, तो लच्छू से पूछा, उसने कहा आपको पता है बाबा को 103 बुखार है, 103 बुखार है, और उसमें भी आपको बुला लिया प्यार के कारण कि आओ बच्चे खेलो। तो हमें बड़ा लगा कि देखो ऐसा भी कोई बाप होगा जिसको इतना प्यार है कि बुखार होते हो भी हमको बुला लिया। अच्छा, मेरा समय हो गया, ओम शांति।
मधुबन ने बाबा तेरी याद आए, मधुबन ने बाबा तेरी याद आए, मन के गगन भुवन में बा।